आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा जल की गुणवत्ता स्नान के लिए पाई गई उपयुक्त। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 1070 युवाओं को वितरित किए 48 करोड़ रुपए के ऋण। बोले, सरकार युवाओं की प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने को संकल्पित। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर होगी चर्चा। और न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी किया अपने नाम। जश्न में डूबे देश भर के खेल प्रेमी। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा जल की गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवालों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। बोर्ड की ये रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को सौंपी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग स्थानों से लिए गए नमूनों में भिन्नता देखी गई थी और ये नमूने पूरे नदी क्षेत्र की समग्र गुणवत्ता को नहीं दर्शाते थे। सांख्यिकी विश्लेषण में महाकुंभ के दौरान स्नान करने की दृष्टि से पानी की गुणवत्ता मानदंड के उपयुक्त थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं की प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री कल मेरठ में युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मेरठ और सहारनपुर मंडल के 1070 युवाओं के 48 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना में अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि नया उत्तर प्रदेश नए भारत का आधार बन रहा है।
आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 7 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। 7.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी इस दौरान दी। एमएसएमई सेक्टर को, जिसका भारत का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास, उसको पुनर्जीवित किया गया।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का जायजा लिया और कहा कि इसे अक्टूबर नवंबर तक राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। श्री योगी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार हो रहा है और ओलंपिक तथा कॉमनवेल्थ खेलों के लिए बेहतरीन खिलाड़ी देगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का पहला सत्र इसी साल से शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरिद्वार और प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे भी जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे 2 कुंभ नगरियों हरिद्वार और प्रयागराज को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने मेरठ के लोगों के लिए रैपिड रेल की सुविधा का भी उल्लेख किया।
गंगा एक्सप्रेसवे 2 कुंभ नगरियों को जोड़ने का भी एक माध्यम बनने जा रहे हैं। कोई सोचता था देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में, और आज साकार हो गया। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ की। मेरठ के लोग जो पहले दिल्ली रहते थे, अब वह मेरठ से ही अप डाउन कर रहे हैं।
मेरठ दौरे पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्षों में मेरठ ने देश की बेहतरीन कनेक्टिविटी हासिल की है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कल देवरिया जिले के देसही ब्लॉक के धमौर गांव में 30 बेड वाले नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आवासीय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शाही ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सा की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सरकार का लक्ष्य दूर दराज के गांवों में सामान्य जन को इन सुविधाओं से आच्छादित करना है। देवरिया दौरे पर आए कृषि मंत्री ने जिले के पिपरा धौला कदम में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी उद्घाटन किया। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कल गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में हायर इंडिया ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मिशन के तहत एयर कंडीशन फैक्ट्री की आधारशिला रखी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस फैक्ट्री के लग जाने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। सत्र का यह चरण 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 20 बैठकें होंगी। एक रिपोर्ट।
बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान वित्तीय कामकाज के अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। इनमें विधि संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक, आवर्जन और विदेशी विधेयक तथा रेलवे संशोधन विधेयक शामिल हैं। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू हुआ, जो 13 फरवरी तक चला। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मथुरा सहित समूचे ब्रज क्षेत्र में रंगोत्सव की धूम मची हुई है। कल मथुरा के नंदगांव में पारंपरिक लठमार होली खेली गई। एक रिपोर्ट।
समूचा ब्रज मंडल में होली की धूम मची हुई है। यहाँ नंदगांव में लठमार होली खेली गई और यहाँ देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने होली का आनंद लिया। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
रंगोत्सव के मद्देनजर राज्य के पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने के लिए व्यापक तैयारी की है। बरसाना में राधा रानी मंदिर तक पहाड़ी पर पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए रोपवे सेवा शुरू कर दी गई है। होली के अवसर पर 13 और 14 मार्च को स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल स्टाफ को अवकाश नहीं मिलेगा। इमरजेंसी वार्डों में चिकित्सकों की तैनाती का रोस्टर तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक के अनुसार होली के दिन जिसकी जहां पर ड्यूटी है वे सभी वहां तैनात रहेंगे। श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने का अनुरोध किया है। इस योजना के तहत किसी संगठन के साथ काम करने वाले श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं। ये योजना देश के 31,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में दूसरे और तीसरे श्रेणी के स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार हर वर्ष 5,00,000 रुपए का कवरेज प्रदान करती है। केंद्रीय बजट में ई श्रम पोर्टल पर इनका पंजीकरण करने, पहचान पत्र जारी करने और स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान की मेजबानी में कल दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 1 ओवर शेष रहते मुकाबला जीत लिया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 76 रनों की कप्तानी पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतते ही देश के खेल प्रेमी जश्न में डूब गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई देते हुए इसे असाधारण और ऐतिहासिक प्रदर्शन बताया। लखनऊ में 26 मार्च से 30 मार्च तक 47वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया जाएगा। कल लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये जानकारी देते हुए यूपी हैंडबॉल एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे ने बताया कि चैंपियनशिप का आयोजन एसोसिएशन की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप में हैंडबॉल एकेडमी और 32 राज्यों सहित 33 टीमें भाग लेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगाजल की गुणवत्ता स्नान के लिए पाई गई उपयुक्त। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में NGT को सौंपी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 1,070 युवाओं को वितरित किए 48 करोड़ रुपए के ऋण। बोले, सरकार युवाओं की प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने को संकल्पित। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर होगी चर्चा। और न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी किया अपने नाम। जश्न में डूबे देश भर के खेल प्रेमी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।